मेरे आत्मीय युवा मित्रों नमस्कार। आज 23 नवंबर 2017 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों आप सबके साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च 2018 के बैच के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन युवा साथियों के नाम हैं संदीप कुमार आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, अभिनव कुमार पाठक ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से, राजीव कुमार पटना बिहार से, मयंक कुमार न्यू दिल्ली से और सचिन कुमार बुलंदशहर छारा उत्तर प्रदेश से। तो संदीप, अभिनव, राजीव, मयंक और सचिन आप सभी 5 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों इसी क्रम में मैं जरा एक बात आप सबसे शेयर करना चाहूंगा और वह बात कुल मिलाकर छोटी सी है और वह यह कि मैंने 7th बैच के स्टूडेंट्स से यह रिक्वेस्ट की थी कि वो अब ऑडियो सुनने में क्या परिवर्तन महसूस कर रहे हैं इसके बारे में मुझे अपने फीडबैक दें। और मैं इस बात के लिए आज फिर से उन्हें धन्यवाद दूंगा कि उनके काफी फीडबैक आ रहे हैं, बड़े सकारात्मक फीडबैक आ रहे हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो बड़े तार्किक फीडबैक आ रहे हैं। आज इसी तरह का एक फीडबैक मुझे मिला है अनामिका कुमारी का जो बेसिकली मुजफ्फरपुर बिहार से हैं और इन्होंने काफी न केवल बड़ा लंबा एक अपेक्षाकृत मैं कहूं कि लंबा फीडबैक दिया है, पॉइंट वाइज दिया है, बल्कि बड़ा प्यारा भी फीडबैक दिया है। मतलब बड़े प्यारे तरीके से इन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया है। उन्हीं की एक छोटी सी लाइन मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा जिसके लिए मैंने कहा कि इन्होंने बड़े प्यारे तरीके से लिखा है, तो आप समझिए कि वो प्यारा तरीका होता क्या है, क्योंकि सिविल सर्विस में लिखने की जो शैली है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। और अगर आपने लिखकर एग्जामिनर के दिमाग में ये भाव पैदा कर दिया कि यार ये इसने बड़े प्यार से लिखा है, तो मान करके चलिए कि आधी लंका तो आपने जीत ली। इसलिए मैं स्पेशली ये वाक्य लिख रहा हूं, ये वाक्य मैं आपके सामने उद्धृत कर रहा हूं। अनामिका कुमारी ने लिखा है क्लास से आने के बाद, ऊपर उन्होंने जो भी लिखा है 15 दिन की क्लास पूरी करने के बाद, आई एम द सेम बट मेनी थिंग्स हैव बीन चेंज्ड एंड इट्स वेरी हैप्पी फीलिंग बिकॉज इट इज पॉजिटिव फीलिंग। मैं तो वही हूं लेकिन मेरी ढेर सारी चीजें बदल गई हैं और मैं सबसे अच्छी बात यह है कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं, और क्योंकि ये जो महसूस करना है ये बहुत ही सकारात्मक है। इसके बाद उन्होंने बहुत डिटेल में बताया है कि उनमें क्या क्या सकारात्मक परिवर्तन आए हैं, तो मित्रों मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। तो अनामिका इस खूबसूरत और प्यारे से फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। मित्रों आज के मुख्य विषय के रूप में हम लोग थोड़े से वित्त आयोग के बारे में बातें करेंगे, फिनांस कमीशन। लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी दूसरी खबरों को देख लेते हैं क्योंकि दूसरी खबरें आज काफी हैं, उनकी संख्या कम नहीं है। एक खबर आप लोगों ने फ्रेंड्स सुनी ही है जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर थी। ये आकाशवाणी समाचार में भी थे और दूरदर्शन समाचार में भी, और दूरदर्शन समाचार में तो इस पर एक छोटा सा इंटरव्यू भी प्रोवाइड किया गया था। थोड़ा सा जान लीजिए, ये प्री एग्जामिनेशन के लिए ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि जिस तरह से खबर लिखी गई है तो हो सकता है अगर आपने विशेष ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ी होने की संभावना होगी। याद रखिए कि इसमें जब आप पढ़ेंगे तो आपको दो शब्द मिलेंगे, एक है सुखोई 30। तो ये जो सुखोई 30 है ये बेसिकली विमान है, राइट। और इसके बाद जो मिसाइल का नाम है जो जिसका परीक्षण किया गया है वो है ब्रह्मोस मिसाइल, ये प्रक्षेपास्त्र है। दोनों का कॉम्बिनेशन इस मायने में है कि ये जो सुखोई 30 जो विमान है, पूरा नाम है सुखोई 30 MKI, ये जो विमान है ये हमारी वायुसेना के पास एक लड़ाकू विमान है, राइट। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इस लड़ाकू विमान से छोड़ी गई है जिसका नाम है सुखोई 30। तो ये आपको दोनों बिल्कुल अलग अलग मालूम होने चाहिए। इस ब्रह्मोस मिसाइल, मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका सफल परीक्षण किया गया है। यह दुनिया की सबसे भारी मिसाइलों में से एक है, सबसे भारी मिसाइलों में से एक। और यह समुद्र में जो जहाज होते हैं उन पर बहुत तेज गति से हमला कर सकती है, और इसका इस्तेमाल, या यूं कह लीजिए कि इस मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद इसका जो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो हमारी थल सेना पर भी पड़ेगा, जल सेना पर भी पड़ेगा, और नौ सेना पर, तो जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन तीनों पर पड़ेगा। मित्रों, इसका जो नाम है ब्रह्मोस, इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए कि है क्या। वैसे तो सामान्य तौर पर अगर पूछा जाए तो ब्रह्मा से जोड़ करके देख लेंगे, जो हमारे यहां ब्रह्मदेव हैं, लेकिन इनफैक्ट इसका जो नाम रखा गया है वो दो राष्ट्रों की नदियों पर रखा गया है, और ये दो राष्ट्र हैं भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी मस्कवा, दोनों को मिलाकर के रखा गया है ब्रह्मोस। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है, राइट। तो ये थोड़ी सी जानकारी ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में थी। मित्रों, एक खबर आपने न्यूज में सुनी होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि अखबारों में इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है, और स्वाभाविक है कि अखबार हमारे सिविल सर्विस की तैयारी कराने के लिए नहीं छापे जाते हैं, है ना, उसका उसकी रीडरशिप एक अलग तरीके से होती है। और वो यह है कि खासकर रूरल एरियाज के हमारी जो विमेन हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र की स्थापना को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र, ये आपको मालूम होना चाहिए, और इस पर आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने को मिलता है तो आप डेफिनेटली उसके बारे में जानकारी हासिल करें, और एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आप संक्षिप्त नोट्स भी तैयार कर लें, और जैसे ही मेरे पास कुछ सामग्रियां इस तरह की आएंगी तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। और आपको मालूम है कि आप चाहे अपने अनसॉल्व पेपर उठा करके देख लीजिए या आप अपना सिलेबस ही क्यों ना देख लें कि जो महिलाओं से संबंधित जो इश्यूज हैं वो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इसके बाद दोस्तों, आपने एक और खबर सुनी और वो खबर थी संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। अभी शीतकालीन अधिवेशन कहा गया ना कि अब शीतकालीन अधिवेशन शुरू होने जा रहा है संसद का, तो ये निर्णय लिया गया, मंत्रिमंडल ने उसको ओके कर दिया। यहां मैं खासकर आपको जो बात बताना चाह रहा हूं वह संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने यह निर्णय लिया। यह भी कैबिनेट की समिति है और इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की, यानी कि ये जो समिति है इसकी अध्यक्षता हमारे होम मिनिस्टर ने की। अब आप देखिए कि स्टूडेंट कंफ्यूज्ड कैसे होता है, राइट। कंफ्यूज इस रूप में होता है कि यह संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति है, तो मंत्रिमंडल से तो सोच लेगा कि चलिए कैबिनेट है ये, ठीक है। अब कैबिनेट में तो सबसे बड़े प्रधानमंत्री होते हैं, तो अध्यक्ष कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। और सच बात यह है कि जो चार बड़ी समितियां हैं हमारे कैबिनेट की, उसमें तीन के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं, तो अगर अनुमान के आधार पर आप जाएंगे तो लगेगा कि हां ठीक है प्रधानमंत्री ही होंगे। और नाम के आधार पर अगर जाएंगे तो नाम है यहां संसदीय मामलों की, तो आपको एक संसदीय मामलों के मंत्री भी होते हैं, तो अगर ऑप्शन दे दिया गया संसदीय मामलों के मंत्री तो दिमाग में यही आता है कि नहीं तब तो इसके अध्यक्ष यही होंगे, क्योंकि ये तो उन्हीं विषय का निर्धारण कर रही है। बस आपको यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्पेशली आप नोट कर लें कि जो संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति होती है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा गृह मंत्री होते हैं, ये आपको नोट कर लेना चाहिए। और यहां पर मैं आपको एक और एडिशनल जानकारी दे दूं कि इसमें जो राजनीतिक मामलों की जो समिति होती है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है, राजनीतिक मामलों की समिति। आप यूं कह लीजिए कि कैबिनेट को तो वैसे ही सुपर कहा जाता है और राजनीतिक मामलों की समिति को आप एक प्रकार से सुपर कैबिनेट कह सकते हैं, राइट। फ्रेंड्स, अब मैं एक दो छोटी छोटी और खबरों पर आता हूं। प्रसार भारती के 20 साल कल पूरे हो गए, आपने वो न्यूज सुनी, प्रसार भारती के पूरे होने का मतलब है कि सन 1997 में प्रसार जो हमारा जो आकाशवाणी और दूरदर्शन जो समाचार तंत्र से जुड़े हुए जो सूचना प्रसारण मंत्रालय के डिपार्टमेंट थे इनको स्वायत्तता देने की बात कही गई। इनफैक्ट सच पूछे जो सरकारी मीडिया है उस पर लगातार ये आरोप लगता रहता है कि ये सरकार का प्रचार प्रसार करते हैं, इनके न्यूज में तटस्थता नहीं होती है, ये सरकार के भोंपू बन गए हैं। तो ये आलोचना खूब लंबे समय से चली आ रही थी, तो उसको लेकर के सरकार ने फिर इसे स्वायत्तता प्रदान की, स्वायत्त संस्था के रूप में। तब आप देखिए कि अब ये प्रसार भारती बन गया है, अलग से प्रसार भारती है, उसका अलग से सीईओ होते हैं, अलग से बाहर से उसमें लोग लिए जाते हैं, जो सीईओ तो चलिए उसके आईएएस ऑफिसर्स सिविल सर्वेंट ही होते हैं, लेकिन और जो उसके अध्यक्ष होते हैं, उसके जो मेंबर्स होते हैं, जो इसका संचालन करते हैं, वो पब्लिक के लोग होते हैं, जो इस क्षेत्र के जानकार होते हैं, ताकि एक संतुलन सा बना रहे और ये इस आरोप से इस आकाशवाणी और दूरदर्शन को मुक्ति मिल जाए कि ये सरकार के माउथ पीस है। तो इस उद्देश्य को लेकर के 1997 में इसे स्वायत्त संस्था का दर्जा दिया गया था और तब से ये इसी रूप में काम करती चली आ रही है। तो मित्रों, न्यूज से बस अब इतना ही। अब मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा आज के हमारे मुख्य विषय पर, क्योंकि वक्त अब काफी कम रह गया है। आपने न्यूज में सुना कि कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि अब वो जो वित्त आयोग 15वां वित्त आयोग का गठन करेगी और उसके लिए फिर सारी चीजें वो निर्धारित करेगी, जो संसद को अधिकार है। बेसिकली मित्रों, इससे पहले 14 वित्त आयोग का गठन हो चुका है, और आप अगर आप संविधान को थोड़ा सा पलट करके देखेंगे, और देखना ही चाहिए, इनफैक्ट सिविल सर्विस की तैयारी करने का एक तरीका भी यही होता है। तरीका इस रूप में कि मान लीजिए अब अगले साल एग्जाम है आपका, प्री भी है 2018 में और 2018 में मेंस भी है, राइट। अब वित्त आयोग पर अगर प्री में प्रश्न पूछ लिया जाता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अब देखिए, सिविल सर्विस में आपसे सीधे सीधे प्रश्न तो नहीं पूछे जाएंगे कि वित्त आयोग के काम क्या होते हैं, निम्न में से बताइए, वो फिर थोड़े से आपको उलझाव वाले प्रश्न पूछेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर यही पूछ लिया गया कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं, तो अब दिमाग में ये बात आती है कि क्या हमें सभी के अनुच्छेद याद करने चाहिए। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, इसके पीछे के विज्ञान को समझिए। चूंकि अब आप देखिए कि 15वें वित्त आयोग का गठन होना है, राइट, लगातार ये खबर अखबारों में आती रहेगी, और एक यूं कह लीजिए कि यूपीएससी एक्सपेक्ट भी करती है स्टूडेंट से कि जब एक वित्त आयोग का गठन होना है, ये ऐसे दौर में स्टूडेंट को चाहिए कि वित्त आयोग के बारे में थोड़ी स्पेशल तैयारी कर ले। तो यहां ये तैयारी जनरल स्टडीज के अंतर्गत थोड़ी सी स्पेशल किस्म की तैयारी की मांग करती है और कुछ विशेष नहीं। तो आपको चाहिए कि आप वित्त आयोग वाले चैप्टर को खोलें और एक बार थोड़ा सा डिटेल में पढ़ जाएं। वैसे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन जब तैयार करेंगे तो सभी चैप्टर्स को पढ़ेंगे, उनकी तैयारी करेंगे, लेकिन जो देखिए सब्जेक्ट की तैयारी करना एक बात होती है और एग्जाम की तैयारी करना थोड़ी अलग बात होती है। सब्जेक्ट की तैयारी हम जनरल आधार पर करते हैं, सामान्य तरीके से करते हैं कि हमको सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान हो जाए, लेकिन जब हम एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो फिर हमारी वही तैयारी थोड़ी सी स्पेसिफिक हो जाती है। हम कुछ विशेष टॉपिक चुनते हैं और उन पर कुछ विशेष ध्यान देते हैं। टॉपिक कहां से चुनते हैं, वो हमारा समसामयिक घटनाएं होती हैं और वो हमें बताते हैं कि हाँ, ये विषय आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा कि फाइनेंस कमीशन हमारे लिए 2018 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब आप चैप्टर पर जाएंगे तो आपको सीधे सीधे पता लग जाएगा कि ये अनुच्छेद 200 जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 280 है, उसके तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं और ये बेसिकली अर्ध न्यायिक संगठन है, संस्थान है। और इसके बाद थोड़ी सी और डिटेल में आप चले जाइए कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके सदस्य कौन होते हैं, उनकी योग्यताएं क्या होती हैं, जो वित्त आयोग है उसके कार्य क्या होते हैं। अब आप देखिए कि जो कार्य है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी विशेष रूप से जानकारी यहां देना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि अब जो 15वां वित्त आयोग होगा उसके टर्म्स कंडीशन रेफरेंसेस तो अभी सरकार तय करेगी, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि उसका जो निर्धारण है वह संसद करेगी। इनके आयोग के जो सदस्य हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इन सब का निर्धारण करने का अधिकार संसद को है, तो संसद अब तय करेगी। तो जो वित्त आयोग संविधान में जो उसे दायित्व दिए हैं उसके तहत सबसे बड़ा दायित्व है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो टैक्स का कलेक्शन होता है उसका कैसे बंटवारा किया जाए। आप देखते हैं कि बहुत से टैक्सेस हैं जीएसटी से पहले जिन्हें केंद्र सरकार वसूल करती थी, इनकम टैक्स केंद्र सरकार वसूल करती है, राइट, कस्टम एक्साइज केंद्र सरकार वसूल करती है, अब राज्यों को कहां से धन मिलेगा। तो जो वित्त आयोग है वह इस बात का निर्धारण करता है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो टैक्सेस कलेक्ट हुए हैं उनको किस किस अनुपात में बांटा जाए, राइट। और इसके बाद जो दो तीन उसके और काम है उनकी मैं चर्चा नहीं कर रहा, वो आप लोग अपने चैप्टर में जाकर के देख लीजिएगा। खासकर मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा मित्रों कि अब देखिए 14वें वित्त आयोग तक तो सब चीजें ठीक थी, लेकिन जैसे ही जीएसटी लागू हो गया है तो अब एक संस्थान अस्तित्व में आ गया है जिसे आप कहते हैं जीएसटी काउंसिल, गुड एंड सर्विसेज टैक्सेस काउंसिल, राइट। अब आप देखिए कि टैक्सेस के बारे में सारे निर्णय ये काउंसिल ले रही है, राइट। तो बट नेचुरल है कि अब वित्त आयोग के जो कार्य होंगे वो थोड़े से डिफरेंट किस्म के होंगे, राइट। तो अब मेंस में किस तरह का क्वेश्चन बनेगा, देखिए अब मेंस में जो क्वेश्चन बनेगा अब वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, और वो जो प्रश्न होगा उसका डेफिनेटली निश्चित रूप से कोई ना कोई संबंध इस जीएसटी काउंसिल से होगा ही, कि जीएसटी काउंसिल बन जाने के बाद अब इसकी क्या आवश्यकता रह गई है, इसकी कितनी उपयोगिता हो गई रह गई है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। और खासकर जब आप वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे तो वित्त आयोग का की जो संरचना की गई थी वो बेसिकली एक प्रकार से यूं कह लीजिए कि जो फाइनेंशियल फेडरलिज्म है, राजकोषीय संघवाद आप कह लीजिए, उस राजकोषीय संघवाद के तहत की गई थी कि वो स्वतंत्र रह करके और केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स का बंटवारा कर सके। अब हमारे पास जीएसटी काउंसिल है, तो जीएसटी काउंसिल तो सच पूछिए तो वित्त आयोग से भी कहीं अधिक राजकोषीय संघवाद का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो बहुत मजबूत एक राजकोषीय संघवाद को रिप्रेजेंट करता है। तो इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जानी चाहिए। और अंत में एक बात और फ्रेंड्स, कि जो वित्त आयोग है वो जो भी अपनी रिकमेंडेशन देता है याद रखिए तो उससे मानने के लिए केंद्र सरकार बाध्य नहीं होती है, वो केवल एक रिकमेंडेशन से सिफारिशें हैं। अब केंद्र सरकार के ऊपर होता है कि उसे माने या ना माने, कितना माने, राइट। और इसकी जो पहला जो हमारा वित्त आयोग जो स्थापित हुआ था वो 1951 में हुआ था, 1950 में संविधान हमारा लागू हुआ और 1951 में वित्त आयोग अस्तित्व में आ गया था। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको प्री को ध्यान में रखते हुए और मेंस की दृष्टि से भी तैयार करने चाहिए। तो मित्रों, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप लोग देख लेंगे। अब मैं आता हूं ईमेल पर। सभी ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, अवनीश प्रताप सिंह गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, विपिन कुमार पटना बिहार, योगिनी पंड्या, उपेंद्र यादव देवरिया उत्तर प्रदेश, आशुतोष शुक्ला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, विपिन कुमार सिंह, मनीषा पटेल, अभिजीत विश्वास पश्चिम बंगाल, अविनाश त्रिपाठी, अश्वनी तिवारी, ऋषभ राठौर ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, ओंकार रविंद्र कुलकर्णी अमरावती महाराष्ट्र और अनूप चंद्रा, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।